الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العلي العظيم، وصدق السنة وصدق رسول النبي الكريم. اصل میں معزز خواتین و حضرات، اصل میں ہم لوگ درمیان میں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ہم دوسروں سے پسند نہیں کرتے، یہ بات ہے. اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی خرابی کا، کہ ہمارا معیار مختلف ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے الگ معیار ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے الگ معیار ہوتا ہے. لینے یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی دکاندار ہو، وہ جب لے رہا ہو تو اس کا باٹ جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ باری ہو، اور جس وقت دے رہا ہو تو اس کا باٹ ہلکا ہو، یعنی اس میں دھوکے کا سامان موجود ہو. تو اگر کوئی دکاندار ایسا کرے گا تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا، سب لوگ اس پر لعنت کریں گے کہ ایسا ظالم آدمی ہے، انہیں ایسے دھوکہ کرتے ہیں کہ لینے کا باٹ الگ ہے اور دینے کا باٹ الگ ہے. لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، بہو کے لیے الگ قانون ہوتا ہے. یعنی بیٹی جو ہوتی ہے، اگر وہ یعنی جلدی سو جائے تو کہتے ہیں طبیعت خراب ہے، ہاں جی. اور اگر بہو کی طبیعت خراب ہو تو جلدی سو جائے تو کہتے ہیں یہ کام نہیں کرتی، کام چور ہے، ہاں جی. تو یہ بالکل یعنی صاف نظر آتا ہے، یعنی اس میں کوئی درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی جب اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں گے تو کہیں گے دیکھو سسرال والے ہم اس کو ہمارے پاس آنے نہیں دیتے. اور جس وقت اپنی بہو کے بارے میں سوچیں گے تو کہتے بار بار جانے، بار بار جاتی ہے، یہ کیا بات ہے، مطلب بار بار جاتی. تو یہ دوگلی پالیسی بالکل ایسی آیا ہے کہ اس میں کوئی بھی ذرا سوچے گا تو. لیکن جس وقت انسان کے اپنے آنکھوں کے اوپر خود غرضی کا عینک لگی ہوتی ہے تو اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. جب خود غرضی کی عینک لگی ہوتی ہے تو ان کو پھر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو اس وجہ سے ہمیں ابتدا اس سے کرنی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو ایک ہی مطلب جو ہے نا آنکھ سے دیکھیں، ایک ہی نظروں سے دیکھیں. اور جو چیز وہی حدیث شریف اس کو عمل میں لانا پڑے گا کہ جو چیز دوسروں کے لیے کوئی سوچتا ہے، یعنی اپنے لیے جو سوچتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی سوچے، تو اس سے پھر ہمارے کام بنیں گے. ہماری معاشرت میں بہت ساری چیزیں گڑبڑیں، لیکن بعض کچھ زیادہ ہی گڑبڑیں، مطلب بعض چیزیں ایسی ہے کہ جن کے بارے میں آدمی کی بات بھی بڑی مختصر عجیب ہوتی. یعنی عورت ذات، اس کے لیے معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جس وقت شادی کرنی ہوتی ہے تو جو باتیں مرد کے حق میں ہوتی ہیں وہ لڑکے والوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں تذکرے کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، دیکھو نہیں اس کا ہے اس کا. اور جو مطلب یہ ہے کہ باہر سے آ رہی ہے تو اس کے بارے میں کافی کمزوری ہوتی ہے. مثلا دیکھیں مہر ہے، تو مہر جو ہے یہ اصل میں عورت کا جو عزت نفس ہے اس کے حساب سے مقرر ہوتا ہے، عزت نفس کے حساب سے. تو اس کو لوگ ایک بوجھ سمجھتے ہیں، جو شادی کرتے ہیں اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس کی عزت نفس ہے، آپ اس کو لے رہے ہیں. تو اس کو عزت دینے کے لیے آپ اس کے شان کے مطابق، جو اس کی حالت ہے اس کے مطابق مہر مقرر کر لیں، جو اس کی حالت ہے. اس لیے شریعت میں اس میں مہر مثل کا عنوان ہے، یعنی اس کے برابر کی لڑکی اس کے خاندان میں جتنا مہر اس کا تھا اتنا مقرر کرنا. ये बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि महर के बारे में काफ़ी लोगों के गलत बातें मशहूर हैं। मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये उस वक्त बहुत मतलब होता है, देते हैं जब तलाक होती है। अब अगर तलाक की नियत कर ली वो भी बुरा है, और जो है ना मतलब है कि तलाक के बगैर महर न देना ये भी बुरा है, तो दोनों काम गलत है। तो ये चीज़ मतलब है थे, हालांकि महर जो है ये तो उसका यानी खलवत सही है, बाद मतलब जन उसका हो जाता है, मतलब लाजिम हो जाता है, उसमें दरमियान में कोई नहीं होते। उसके बगैर अगर हो तो आधा होता है, अगर से पहले अगर, वरना यह है कि उसके बाद फौरन लाजिम हो जाता है। और इसमें जो है ना मतलब ये सारे कर्जों से ज़्यादा अहम कर्ज है, हाँ जी, लेकिन इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है कि ये भी देना है। अच्छा, पहले बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ जगहों पे, सब जगहों पे तो नहीं, बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि महर बहुत ज़्यादा बंधवाते हैं शान के लिए। एक जगह मैंने क्या कर रहा था, तो लड़के के ज़राया मदनी बहुत कम थे, तो उसका जो मामू था वो उसका बड़ा जन्म महर लगवा रहा था, तो मुझे पता था कि बाद में दे नहीं सके, और सिर्फ उन लोगों ने इसके लिए रखवाया, बस अपनी शान के लिए, और ये वो। तो उस पर मैंने फिर बाकायदा बाकायदा बयान कर लिया, और हालात ज़रा उसके लिए बना दिए, और फिर उसका महर उसके रीजनेबल हद तक जो है ना मैंने कम कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर मतलब देने की नीयत नहीं होती है ऐसे मामले में, इसमें सिर्फ एक जो है ना मतलब शोशा होता है, तो ये शोशा के लिए जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेदारी है, हाजी मतलब जाना उसको फिर देना पड़ता है। तो इस वजह से ये हमारे माशरे के अंदर इस किस्म की चीज़ें हैं, और जो लोग मतलब ये है कि महर के लिए वो करते हैं कि भाई कम से कम महर बांधना चाहिए, तो वो लड़की की हैसियत को घटा देते हैं, और जो अपनी शान बढ़ाने के लिए न देने की नीयत के साथ बड़ा लगा लेते हैं, तो ये एक नमूदो नुमाइश होती है। जहेज जो है ये इसके किस्म की बात है कि ये तो बेटी चूंकि जा रही है, तो ज़ाहिर उनके लिए एक खैरख्वाही वाला मामला है कि उनके लिए आसानी हो स्टार्ट में, कोई चीज़ें उनको ज़्यादा अरेंज ना करना पड़े, तो इसके लिए एक वालिदैन की मोहब्बत का एक मसला होता है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि लड़के वालों का हक है, ये लड़के वाले अगर उसको अपना हक समझेंगे तो फिर इसकी हैसियत बदल जाएगी, हाँ जी। और अगर लड़की लड़की वाले इसको मतलब मोहब्बत की वजह से दे रहे हों, तो उसके लिए फिर ये कि मोहब्बत कोई नुमाइश तो नहीं होती, कि मोहब्बत को सबके सामने करना होता है, कभी कोई अपनी बच्ची के साथ सबके सामने मोहब्बत कर रहा होता है, वो तो ज़ाहिर मतलब है उसका हक है, तो वो तो उसको करना होता है, तो उसमें नमूद नुमाइश नहीं होती, बल्कि ये है कि किसी अच्छे मौके पर उनको पहुंचा दिया जाता है। तो ये दो तरफा जो मसाइल है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती है, वरना ये है कि इसमें वलीमा जो है ये भी गलत नहीं, सुन्नत है, लेकिन सुन्नत तरीके पे करो, हाँ जी। महार जो है वो लाजिम है, लेकिन इसमें ना नमूद नुमाइश हो और ना जो है लड़की का हक मारा जाता हो, हाँ जी। और इस तरीके से मतलब यह है कि इसमें जो यानी रसूमात हैं, उन रसूमात जिनका कोई वैल्यू नहीं होती शरीयत में, उस पे बड़े धूमधाम से खर्च होते हैं जो रसूमात होते हैं, लेकिन जो असल काम है जैसे महार वगैरह है उसमें जिसको कहते हैं यानी वो की जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो मतलब यह है कि अगर 2 लाख रुपए खर्च करना चाहते वलीमे पे, हाँ जी, वो उसमें से अगर 1 लाख कम कर ले और वो महर में दे दे, तो उसका गला मतलब जाना साफ हो जाएगा, उसमें जाना वो उसके ऊपर जुर्म नहीं होगा, हाँ जी। वो 1 लाख खर्च कर ले साल के ऊपर, जो है ना वो वलीमे के ऊपर, क्योंकि सुन्नत है और ये फर्ज है, हाँ। तो मतलब ये कि ये असल बात यह कि हम लोग शरीयत का जो बुनियाद है उसको नहीं समझते। शरीयत का जो बुनियाद है कि सबसे पहले फ़र्ज़ का ख्याल रखा जाएगा, फिर साथ वाजिब का, फिर सुन्नतों का, फिर मुस्ताबात का है, और फिर मुबाहात का। मुबाहात की गुंजाइश होती है, वो लाजिम नहीं होते। हाँ जी, तो ये हमारा तरीका ये कि जो अव्वल तो ये होता है कि मुबाह तो क्या नाजायज़ पे ज़्यादा खर्च किया जाता है, जो नाजायज़ उमूर है, जिसकी शरीर में जिस तबजीर उसको हम कहते हैं, यानी तबजीर है, इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, तो शैतान के भाई है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं, तबजीर के ऊपर। अच्छा, फिर इसके बाद अगर ज़्यादा तीर मारा तो मुबाहात के ऊपर। लेकिन जिस वक्त फ़राइज़ वाजिबात की बात आती तो मामला बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? इससे नतीजा निकलता है कि सारे शैतान की कारस्तानी है, क्योंकि शैतान जो है ना, ये किसका काम ये होता है, वज़ईन लहुम शैतान अमालहुम, शैतान ने उनके अमाल उनके लिए मुज़ईन करके रख दिया। तो शैतान इसमें इस तरह पूरे मैनेवरिंग करता है, और वो फिर सारे मामलात उसके मुताबिक हो जाते हैं। हाँ जी, यानी वो जो नहीं करने होते हैं उनको बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और जो करने के होते हैं उनको बहुत हल्का करके दिखाता है, जिसकी वजह से आवे कावे बिगड़ जाता है। तो जिस तरह हम रास्ते पे चलते हैं, तो अगर कीचड़ हो तो देख देख कर कदम रखते हैं, ये कहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए या मेरा पैर ख़राब ना हो जाए, इस पे देख देख कर कदम रखते हैं। तो क्या हम इस तरह नहीं कर सकते? अगर माशरे में कीचड़ बन चुका है, तो जिस वक्त कोई इस किस्म की बात हो, यानी शादी वगैरह की या दूसरे काम ज़रूरी इस तरह हो, उस वक्त हम ज़रा सोच सोच के काम करें कि कौन सा काम हमें करना है और कौन सा नहीं करना। हाँ जी, थोड़ा सा तामुल करके सोचेंगे, और अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम भी पढ़ लेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम भी। हाँ जी, तो शैतान के शर से इंशाल्लाह बचेंगे, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिल के अंदर सही बात लाएंगे। और इसके लिए जो है ना, वो मायार जो है वो आले हक को देखना है, जो आले हक है उनको देखना है कि उनने शादियां कैसे की, उन्होंने क्या तरीका। सबसे बड़ी बात तो सहाबा किराम है, तो फिर अपने वक्त के जो नेक लोग हैं उनको देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे किए, उनसे सीखना चाहिए, बजाय इसके फुसाक फजूर का, फसाक फजार को हम देखें कि वो उन लोगों ने कैसे शादियाँ की है, या उन लोगों ने कैसे कैसे वो किया है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा दे, और तमाम गलत कामों से मारिफात फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله